पंडरपुर की एकादशी चल रही है, तो चैतन्य महाप्रभु पंडरपुर में भी गए हैं। पंडरपुर में उनकी मुलाकात होती है तुकाराम महाराज से, और वहाँ से आगे जाते हैं, और यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि वो बाणगंगा नाम की जगह है चौपाटी में, वालकेश्वर में, वहाँ पर भी आए हैं। और यहाँ से आगे एक नालासोपारा में जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए हुए हैं, रामकुंड नाम की जगह है, जहाँ पर परशुराम जी ने 1000 साल तपस्या किया था। तो वो जगह पर 3 गुफाएं हैं जहाँ पर परशुराम जी ने 1000 साल तक तपस्या किया था। उसी जगह एक जगह है, उसका नाम है रामकुंड, जहाँ पर राम भगवान भी वनवास में आए थे और चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी वालकेश्वर में चैतन्य महाप्रभु बाणगंगा में आए थे, तो वहाँ से वेस्टर्न लाइन से होते हुए हमारे यहाँ से गुजरते हुए वो नालासोपारा गए हुए। दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक। इसलिए जब हम सोचते हैं कि मीरा रोड के इस छोटे से शहर में, उपशहर में, उपनगर में इतने लोग, भक्त लोग जमा हो गए हैं, इतने घरों में जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापन किया गया है, और इतनी बड़ी मात्रा में लोग आगे पीछे मंदिर में मंगल आरती में, शयन आरती में, दोपहर की आरती में, उत्सव में, संडे में जाते रहते हैं, तो ये सब इस जो हम सोचते हैं लॉजिकल तर्क से सोचते हैं, तो हमको पता चलेगा कि ये सब भगवान के चरण स्पर्श का कमाल है। जब भगवान ने यहाँ पर कृपा किया तो एक ही जगह पर सब भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे कोई गृहस्थों का कांग्रेगेशन नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पर एकत्र हो गया हो। जैसे बोरेली में डिवोटीज हैं, रहते हैं, कांदिवले में रहते हैं, मलाड में भी रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, खार में रहते हैं, चर्चगेट में भी रहते हैं, लेकिन छोटे सी एरिया में इतनी ज़्यादा संख्या में भक्त लोग जो है वो कम रहते हैं। तो अपने 6 साल की 7 साल की यात्रा दक्षिण भारत की पूर्ण करने के बाद में अपने आखिरी जीवन की जो 18 साल है उनके, 30 से 31 से 48 वो उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए। चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके जीवन में उनको कृष्ण प्रेम का अनुभव करना था, वो उन्होंने इन 18 साल में अति उत्कट भावना में जगन्नाथपुरी में रहते हुए जगन्नाथ जी के साथ में संबंध करते हुए उन्होंने दिव्य आनंद का और प्रेम का अनुभव किया। और वो 18 साल में उन्होंने कोई यात्रा नहीं किया, 18 पूरे साल एक ही जगह पर रहे जगन्नाथपुरी। तो हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए सबसे उत्कृष्ट स्थान लगा जगन्नाथपुरी, इसलिए हमारे लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उनकी बहुत लीलाएँ वहाँ पर हैं, तो उसमें से एक लीला है रथ यात्रा, तो जगन्नाथ की रथ यात्रा का उन्होंने अनुभव किया। तो जब वो आए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर एक राजा था, उसका नाम था प्रताप रुद्र, और वो भगवान का बड़ा भक्त था। लेकिन एक राजा होने के नाते चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो उन्होंने उनसे मिलने का इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ, घरदार, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, स्त्री परिवार सब छोड़ देता है, तो उसके बाद में उसको किसी भी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। किसी भी धनवान व्यक्ति को, जो व्यक्ति बहुत ऐश्वर्य में रहता है, धन दौलत में रहता है, पति पत्नी परिवार में रहता है, अधिकार में रहता है, उसको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जानबूझकर प्रताप रुद्र राजा, उनके महान भक्त थे ये तो भगवान जानते ही है ना अंतर्यामी होकर, फिर भी जगत के लिए उनकी महान भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने उनको मना कर दिया। तो मना करने पर राजा प्रताप रुद्र कहते हैं कि मैं राजपद छोड़कर, राज्य छोड़कर रास्ते का जो स्वीपर होता है वो बनूंगा अभी इसके आगे। अगर राजा बनने से मगर भगवान नहीं मिल सकते तो राजा होने से क्या लाभ है। ये प्रताप रुद्र जो राजा थे वो बड़े महान भक्त थे भगवान के, इतना सुंदर व्यक्तित्व है उनका, इनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है कि एक राजा होने पर भी वो झाड़ू वाला होने को तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर राजा होने पर मुझे भगवान से भक्ति नहीं कर सकता हूँ मैं, उनकी मुलाकात नहीं हो सकती है, तो मेरे राजपद को कोई अधिक कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। उससे अच्छा अगर मैं झाड़ू वाला बनता हूँ और भगवान मुझे मिलने को तैयार है, तो झाड़ू वाला बनना मेरे लिए बहुत अनुकूल है, भाग्यशाली है। तो इतना भगवान पर प्रेम करते हैं भक्त लोग कि अपना सब कुछ खोने को तैयार है उनके लिए। समझो कोई थोड़ा सा धनवान होगा तो अगर बोलेगा कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, तो बड़ा त्याग नहीं होता है। वो तो राजा थे, हाँ, पूरा राज्य, पूरा अधिकार, पूरा धन दौलत, पूरा ऐश्वर्य उनके साथ था, लेकिन वो तत्क्षण छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने बार बार भगवान को विनती किया, भगवान ने बार बार कहा कि भक्तों को अगर तुमने दोबारा इस बारे में मुझे पूछा तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊँगा। भक्त लोग डर गए कि भगवान गुस्सा करेंगे तो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर भी इस प्रकार से उस प्रकार से बार बार उनको याद दिलाते रहे क्योंकि राजा अभी ऐसी अवस्था में है कि वो शरीर छोड़ने को उसका दिल कर रहा है, वो झाड़ू वाला बनने का सोच रहा है, वो सब कुछ छोड़ देने का सोच रहा है। लेकिन उसके बाद में एक घटना हुई, एक भगवान के भक्त है रामानंद राय, वो जो भगवान की सखी हैं विशाखा देवी उसके अवतार हैं। एक और भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और वो भगवान की जो सखी हैं ललिता देवी उनका अवतार है। तो ललिता और विशाखा, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, इन दोनों पुरुष के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो रामानंद राय ग्रस्त थे, स्वरूप दामोदर सन्यासी थे। तो रामानंद राय जो थे वो एक दूर के डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर थे, राजा प्रताप रुद्र के अधिकार के नीचे उनकी सेवा में थे। तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में आ जाओ। तो रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र को मिलने आते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान ने इच्छा किया है, मैं क्या करूँ, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, मैं आपके पास रिपोर्ट देता हूँ अपनी सर्विस का, तो आपके आज्ञा के बिना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जैसे ही रामानंद राय ने ये बात कही तो राजा प्रताप रुद्र ने उसको आलिंगन दिया। ऐसे कोई राज दरबार में शिष्टाचार में ऐसा नहीं होता है कि राजा किसी गवर्नर को आलिंगन देगा, लेकिन रामानंद राय का ये दिव्य भाग्य देखते हुए कि भगवान ने उनको बुलाया, उनके संग में रहने के लिए बुलाया है, वो भी काम छोड़ के बुलाया है। तो कहते जाओ रामानंद राय, तुम बड़े भाग्यशाली जीव हो, मैं राजा होकर मुझे भाग्य नहीं है जो तुम्हें मिल प्राप्त हो रहा है। जाओ, तुम नौकरी छोड़ के जा सकते हो, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहने के लिए मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दूंगा, फुल्ली पेड, आप जाओ। तो ये जब बात चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, वेरी वेरी हैप्पी राजा के ऊपर। ये पहला उनका कदम था जब राजा के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, मिलने को तैयार नहीं लेकिन प्रसन्न हुए। उसके बाद में रथ यात्रा का उत्सव आता है, और रथ यात्रा का बड़ी लंबी कहानी है राजा प्रताप रुद्र की, आज हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। उद्देश्य यह है कि कहने का कि राजा प्रताप रुद्र आखिर में भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, बड़े नम्र बनते हैं भगवान के सामने। यहाँ तक कि उस जमाने में वो प्रथा नहीं थी जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू मारने की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए राजा स्वयं राजवस्त्र पहनकर हाथ में झाड़ू लेकर रथ के सामने सब जनता के सामने रस्ते पर झाड़ू मारता है रथ के सामने, और अपने हाथ से सुगंधित जल जो है वो रस्ते पर छिड़कता है। और ये देखते हुए भी चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। तो रथ यात्रा शुरू होने के पहले 3 दिन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का निवास जो है राजा प्रताप रुद्र ने स्वयं किया था रहने का इंतजाम, भले वो मिलने को मना कर रहे लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पूरी व्यवस्था राजा ने की थी। तो उन्हें वो जानते थे कि राजा चैतन्य महाप्रभु को सबसे बड़ी व्यवस्था अच्छी लगेगी जहाँ पर शांत वातावरण हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनको अपना भजन पूजन अपनी भावना भगवान के प्रति व्यक्त करने के लिए अनुकूल स्थान होना चाहिए। तो वो काशी मिश्रा नाम का एक व्यक्ति होते हैं, भगवान के भक्त हैं वो, उनका मंदिर था, उसका नाम था गंभीरा या काशी मिश्रा भवन कहते थे उसको। उसके अंदर श्री श्री राधा राधा कांत की मूर्तियाँ विराजमान थी, और वो समुंदर के बिल्कुल पास में था, और वहाँ पर कोई शोर शगुल कुछ नहीं था, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का निवास था। तो काशी मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रा के घर में एक बड़ा मकान उनको दे देते हैं, वहाँ पर कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 3 दिन पहले रथ यात्रा के जब आयोजन शुरू होता है तो चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रा जगन्नाथ मंदिर के सुपरिंटेंडेंट और सार्वभौम भट्टाचार्य जो राजा के राज पुरोहित थे, ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं ये बृहस्पति के अवतार थे, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जी अवतार लेकर एक विद्वान पंडित के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जो सबसे बड़े विद्वान पंडित थे। इतने विद्वान थे वो कि जब वो उनके गुरु के पास पढ़ने गए तो ऐसा एक शास्त्र था जो उनके गुरु किसी को कॉपी उसके देते नहीं थे, केवल उसको पढ़ाते थे, कोई प्रिंट नहीं कर सकता उसको, कोई दोबारा वहाँ पर कोई उस टाइम जेरोक्स मशीन में कुछ नहीं था उस टाइम, तो वो अगर कोई किताब कॉपी करनी होती है तो उसको हाथ में लिखना पड़ता था, हाथ से राइट द होल बुक बाय हैंड, तभी कॉपी बनेगी, तभी कोई लेके जाएगा उसको। और ऐसे भी लोग जनरली करते थे, कोई लोग ऐसे काम करते थे किताब लिखने का कॉपी करने का, लेकिन उन्होंने उस किताब को किसी को कॉपी करने को भी नहीं दिया था, केवल उसको पढ़ाते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतने विद्वान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने जब उनसे वो विद्या सीखा वो ग्रंथ का अभ्यास किया तो सारा ग्रंथ उन्होंने याद कर लिया उसको, और जाके उसी ग्रंथ को अपने विद्यानगरी, उनका एक स्थान था जहाँ पर वो पढ़ाते थे विद्यानगरी में, वहाँ पर वो शास्त्र उन्होंने उनको पढ़ाया, सब लोग अपने शिष्यों को पढ़ाया, इतने बड़े विद्वान थे। तो उस जमाने में वो शास्त्र बहुत लोगों ने सीखा था लेकिन पूरा कंठस्थ और पूरा याद किसी को भी नहीं था, लेकिन इतने बड़े विद्वान थे, विद्वान तो तर्कशास्त्र के थे लेकिन मायावादी थे साथ साथ में, भगवान को व्यक्ति रूप में मानते नहीं थे। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शुद्ध भक्त बन गए। वो कहते थे कि मैं एक कौवे की तरह था लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुझे गरुड़ बना दिया, मैं बिल्कुल शून्य, जिसकी भावना होती है तर्कवादी लोग होते हैं उनमें से मैं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मुझे परम भक्तों की पंगत में बिठा दिया। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर के सुपरिंटेंडेंट और राशि मिश्रा को बुलाते हैं और मंदिर से विनती करते हैं कि मुझे ऐसी इच्छा है कि जहाँ पर रथ पहुँचेगा उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। हाँ, जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो एक जगन्नाथ का भव्य मंदिर है जो स्वयं बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के साथ साथ बैठे हुए राजा इंद्रदुम्न के साथ में उस मंदिर को स्थापन किया था, उसकी कथा मैं आप लोग अगले मंगलवार को बताऊँगा। तो वो जो राजा इंद्रदुम्न और बृहस्पति ने स्थापन किया था मंदिर जो है वो आज भी वहाँ विराजमान है, जिस मंदिर में जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की गई थी, मूर्तियों की स्थापना की गई थी। तो उसको वो जगन्नाथ मंदिर है और बीच में ग्रैंड रोड है, वो करीब 10 किलोमीटर लंबा है और उसके एंड में एक गुंडीचा नाम का मंदिर है। गुंडीचा ये राजा प्रताप रुद्र के पत्नी का नाम है, उसने वो मंदिर बनवाया था। और जो मंदिर का इलाका है उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन, क्योंकि वहाँ पर ब्रजवासियों की भावना से सब भक्तगण राजा जगन्नाथ की सेवा करते हैं। तो साल में एक बार जब जगन्नाथ निकलते हैं रथ में से तो रथ यात्रा उस रास्ते पर होती है ग्रैंड रोड पे, और वहाँ से वो रथ यात्रा पहुँचती है गुंडीचा मंदिर में और वहाँ पर भगवान निवास करते हैं 9 दिन तक। और वहाँ पर बड़े प्रेम भाव से अलग अलग परिवार के, विशेष परिवार के लोग जो केवल उन्हीं 9 दिनों में भगवान की सेवा करते हैं, और साल भर उनको सेवा का कोई अधिकार नहीं है। साल भर शयत, समर और दायित, ये 2 जाति के लोग होते हैं जो ब्राह्मण लोग नहीं हैं, वो लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करते हैं और 9 दिन वो लोग सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान वहाँ जाकर रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु विनती करते हैं कि मुझे वो गुंडीचा मंदिर साफ करने का परमिशन दे दो। तो सुप्रीम क्या उत्तर देता है कि आप जो जगत के मालिक हो, आपको किसकी परमिशन देने की जरूरत नहीं है, या अगर आपकी ये इच्छा है तो हमारे लिए आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है, आप आज्ञा करो और तुरंत हम व्यवस्था कर देते हैं। तो तुरंत वो 100 बाल्टी और 100 झाड़ू की व्यवस्था कर देता है और तुरंत ये खबर फैलती है और रथ यात्रा के पहले दिन सैकड़ों भक्त वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको, देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले परमिशन लेते हैं। हाँ, भगवान भी जब आते हैं तो दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे व्यवहार होना चाहिए हमारा, नम्रता पूर्वक। अगर हम अधिकारी पुरुष भी हैं फिर भी हमको नम्रता से बात करनी चाहिए, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के अधीक्षक से परमिशन लेते हैं। और उसके बाद में सब भक्त जब इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह तो उस समय अपने हाथ से उनको चंदन लगाते हैं उनके सर पे और उनको माला पहनाते हैं फूलों की और सबको फिर एक झाड़ू और एक बाल्टी हाथ में देते हैं उनके और फिर उनकी सेवा आरंभ होती है। और स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेते हैं और सब भक्तों के साथ में एक उदाहरण के रूप में दिखाते हैं कि कैसे साफ करना है। ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए हैं सिंहासन पर और सबको गाइड कर रहे हैं, ये करो वहाँ जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, ये नहीं बोल रहे हैं। स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर सब भक्तों के साथ में झाड़ू लगा रहे हैं और सबसे पहले वो जगह गुंडीचा मंदिर में जितना भी स्थान है वो सब में झाड़ू लगाते हैं, मतलब झाड़ू से कचरा निकालते हैं, इसमें कोई तिनका है, कोई पत्ता है, कोई और कचरा है, कोई समुद्र के रेत के दाने हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं और आसपास में जितनी बिल्डिंग है उसके सब ज़मीन वो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मंदिरों के आसपास पुजारियों के रहने के घर होते हैं और कोई भोग मंडप होता है, भोग मंदिर होता है और कोई स्टोर होता है, तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी जगह होती है। वो भोग मंदिर भी साफ़ करते हैं, जहाँ पर भगवान का भंडार रखा है उसको भी साफ़ कर देते हैं, सब जगह ज़मीन पर साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में सब लोग इकट्ठा कर करके कचरे को बाहर जमा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने धोती में सारी धूल और कचरा को इकट्ठा करते हैं और गांठ बांध कर बाहर जाते हैं मंदिर के, वहाँ पर एक जगह उसको जमा करते हैं और उन्हीं का अनुकरण सब भक्त लोग करते हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु फिर दोबारा सब भक्तों को बुलाते हैं और कहते हैं अभी दोबारा झाड़ू मारो, जहाँ जहाँ कोने कोने में आपने भूल गए होंगे आप शायद, तो वहाँ वहाँ आप जाकर कोने कोने ढूंढ ढूंढ के निकाल के कचरा निकालो। और वो कहते हैं कि जब आप कचरा अपना डालोगे, उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति अपना अपना कचरा जो है अलग अलग जगह पर ढेर जमाएगा उसका, और मैं आके देखूंगा कि सबसे अधिक कचरा किसने जमा किया है। फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु सेकेंड राउंड चालू करते हैं और कोने कोने में से तिनका 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 निकालते हैं और सब कचरा इकट्ठा करके सब लोग जमा कर देते हैं। और उस बार देख सब लोग देखते हैं कि सबका जितना ढेर था सैकड़ों भक्तों का मिलकर, उससे भी अधिक ढेर अकेले चैतन्य महाप्रभु का था। फिर सब लोग जो बाहर खड़े होते कुछ लोग, उनको भगवान ने सेवा बांट के दी होती है कि आप लोग जो नरेंद्र सरोवर है, इंद्रधनुष सरोवर जहाँ पर तालाब है पानी का, वहाँ पर आप सब लोग लाइन लगाओ और वहाँ से पानी आपको लाना है। तो वो गुंडीचा मंदिर सारा पास में है, बहुत नज़दीक है, चलने के अंतर पर है। तो वहाँ भक्त लोग खड़े रहते हैं और पास करते हैं बकेट को, और बहुत सुंदर प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब भी आप लोग साफ कर रहे हैं तो किसी को भी मुंह से कुछ बात नहीं करनी है। कुछ चाहिए तो कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलना है, कुछ लेना है तो कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलना है। तो सब जगह पर साफ सफाई हो रही थी और एक ही गूंज हो रही थी, हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोलो, बोलो बोलो हरि हरि कृष्ण कृष्ण। तो जब भी वो बर्तन के पानी भर के बाल्टियां पास करते हैं, देने वाला बोलता है हरि हरि और लेने वाला बोलता है हरि हरि, इस तरह से रास्ते पर भी हरि हरि कृष्ण कृष्ण की गूंज चलती रहती है। और फिर वो सब सामान पानी जो है वहाँ पहुँचता है तो भक्त लोग उसको लेने लगते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि अभी सब लोग ये पानी जो है सीलिंग पर डालो। तो सब लोग छत पर उसको पानी को फेंकते हैं तो पानी बराबर दीवार से उतर कर नीचे आता है और सब लोग फिर उसको साफ करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं परम भगवान जो है वो भक्त के रूप में आते हैं, अपनी धोती से भगवान का जो सिंहासन है जहाँ पर भगवान बैठने वाले हैं, जिस वेदी पर वहाँ भगवान बैठने वाले हैं, बहुत ऊंचा स्थान होता है वो। जैसे ये हॉल है, इससे आधी से अधिक ऊंचाई उस वेदी की होती है जिस पर भगवान आने वाले हैं अगले दिन। तो उसको चैतन्य महाप्रभु उस पर जो आसन है उसको और उस पूरी वेदी को जल से सींचते हैं, झाड़ू से साफ करते हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि इस बार भक्त लोग जो है जो झाड़ू कड़क है उससे वो पानी साफ करते हैं, यानी समझ में आपको आया क्या बोलते हैं उसको आप, खराटा। इस बार पानी से वो खराटा लेकर साफ करते हैं, मतलब उसको घिसते हैं अच्छी तरह से, तो पानी फेंकते हैं फिर घिसते हैं फिर पानी फेंकते हैं फिर घिसते हैं। और फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी धोती से उस सिंहासन को चमकाया है पहुँच पहुँच के, और सब भक्तों देख रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग जो है सीलिंग पर पानी फेंकने के बाद में जो दीवार से पानी आ रहा है उसको पोंछ रहे हैं, फिर पूरा सीलिंग और दीवार साफ होने के बाद में सब भक्त लोग जमीन पर पानी फेंकते हैं। तो कुछ भक्त लोग जानबूझ के भगवान के पैर पर पानी फेंकते हैं और कुछ लोग भक्त लोग ये देखते हुए जा जाकर पानी पीते हैं, भगवान के चरणों से आया हुआ पानी जो है उसको पीते हैं, और भगवान देख देख कर उसको अनजान जैसे करते हैं, ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये भगवान का मंदिर है और भगवान का मंदिर में किसी और भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति का पैर धोना नहीं चाहिए, ये अपराध है, ऐसे ऊपर से क्रोध दिखाते हैं। लेकिन भक्तों का भाव देखकर उनको मन ही मन आनंद भी होता है। तो इस प्रकार से बाहर के सब लोग तैयार हैं जल देने के लिए और खाली बाल्टी लेने के लिए भी बहुत तत्वर तत्पर हैं। इस प्रकार से लगातार बाल्टी देना, बाल्टी आना, बाल्टी देना, बाल्टी देना, इस प्रकार सब लोग कपड़ा लेकर जमीन को स्वच्छ कर देते हैं। फिर दोबारा वो जाते हैं और बाकी के बाजू के जितने भवन हैं, जितने रहने के स्थान हैं, भगवान का भोग मंदिर है जहाँ पर भोग इकट्ठा होता है, भगवान की थाली बनती है वहाँ से जाती है भोग लगाने के लिए, वो पूरा पानी और कपड़े से और वह पानी फेंक कर उसको साफ कर देते हैं। तो देखिए ये जो मंदिर की साफ करने की लीला है, इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु जब खुद साफ कर रहे हैं और भगवान के भक्त खुद साफ कर रहे हैं, तो उसके जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं कि मंदिर उस प्रकार से स्वच्छ हो गया जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का स्वच्छ हृदय था जो भगवान के प्रेम से भरा हुआ था, उसी प्रकार से उसके हृदय की तरह लख हो गया मंदिर, स्वच्छ और साफ हो गया। अब भक्त लोग भी ये साफ करने के पश्चात स्वयं बहुत तेजोपुंज दिखने लगे और उनका भी हृदय और मन, उनका जो चेहरा था वो उनके मन और हृदय की तरह स्वच्छ हो गया था, जो भगवान का जो ये प्रक्रिया है साफ करने की। इससे भगवान दिखाते हैं, सबको बताते हैं इस क्रिया की लीला से कि जब तक जगह साफ नहीं होती है, स्वच्छ नहीं होती है, वहाँ पर भगवान प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब जगह स्वच्छ हो जाती है और वहाँ भगवान को हम आह्वान करते हैं तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा हृदय जो है वो भगवान का निवास स्थान है, लेकिन जब तक हमारा हृदय गंदगियों से साफ नहीं होता है तब तक भगवान उसमें रह नहीं सकते। रहते ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन आपके लिए वो अप्रकट है, आपको उनकी अनुभूति नहीं हो सकती है। हालांकि भगवान हृदय को छोड़कर जाते नहीं है, हाँ भगवान को अर्जुन को बताते हैं, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानां, सभी जो भक्त लोग, सभी जो भगवान के जीव हैं यहाँ पर, आत्माएं हैं, भटक रहे हैं इस योनि से उस योनि में, लेकिन सब योनि के अंदर हृदयेशे, हृदय का जो स्थान है वहाँ पर मैं तिष्ठति, यानी कि वहाँ पर उपस्थित हूँ मैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो प्रस्तुत है, प्रकट है, कुछ लोगों के लिए वो अप्रकट है। इसका कारण है अस्वच्छता। हरे कृष्णा, जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाओ, हरी 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 हरी। तो हृदय की स्वच्छता ये भगवान को निवास स्थान आमंत्रण करने के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर भी उसी भावना में अस्पताल के साफ सफाई का योजना बनाते हैं, ताकि वही भाव जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, वो लीला जो प्रकट किया, जिसका उद्देश्य प्रकट की है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक हमारा बाह्य परिसर, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो जगह, जहाँ पर हम रहते हैं वो जगह, जहाँ पर हमारी चीज़ें रखते हैं टेबल कबर्ड वो सब जगह, हमारा स्वयं का शरीर, हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारा चेहरा स्वच्छ नहीं होता है, उसके बाद हमारा मन स्वच्छ नहीं होता है, हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं होती है, हमारी आत्मा स्वच्छ नहीं होती है, तब तक भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकते, तब तक उनका अनुभूति अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली शुरुआत जो है वो हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि हृदय में आत्मा निवास करती है, वहाँ पर परमात्मा भी निवास करते हैं। जब वो जगह स्वच्छ हो जाएगी तो हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, फिर बुद्धि के द्वारा मन स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रित करता है, फिर मन के द्वारा इंद्रियां स्वच्छ हो जाएगी, क्योंकि मन के आदेश पर इंद्रियां कार्य करती हैं, तो मन स्वच्छ हो जाएगा तो स्वच्छ विचार आएंगे, और स्वच्छ विचार से स्वच्छ योजनाएं बनेगी, और स्वच्छ कार्य आदमी करेगा, यहाँ तक कि अपना जो पेशा है, धंधा है हमारा, वो भी आदमी नेकी से, प्रामाणिकता से करेगा, स्वच्छ दिल से करेगा, नो चीटिंग। नौकरी भी करेगा हृदय से करेगा, उसमें भी काम चोरी नहीं करेगा, धंधा करेगा तो अपने ग्राहक को चीटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल जितना भी दाम है उतना लेगा, अपना नफा भी लेगा लेकिन चीटिंग नहीं करेगा, गलत माल बेचकर पैसा नहीं बनाएगा, पेशेंट को गलत बताकर उसका इलाज नहीं करेगा, जिसको जिसको नॉर्मल डिलीवरी करना है उसको ऐसा नहीं बताएगा कि नहीं आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपका बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता है, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, ज़रूरत नहीं फिर भी टेस्ट करेंगे। ये सब काम जो है अस्वच्छता के डिपार्टमेंट में आते हैं, और हमारे मरीज को भी हमको जब व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल प्रामाणिक व्यवहार करना चाहिए। स्वच्छता केवल स्नान करने से नहीं होती है, साबुन लगाने शैम्पू लगाने से स्वच्छता नहीं होती है, स्वच्छता व्यवहार की होती है, और आपका हृदय कितना साफ है ये आपके व्यवहार से पता चलेगा। आपका अगर मन साफ नहीं है तो आपके व्यवहार में मालूम पड़ेगा, आपके चेहरे से मालूम पड़ेगा कि आपके मन में क्या है। आपके मन में अगर द्वेष है, अगर क्रोध है, अगर निंदा है, सब आपके चेहरे से और आपके शब्दों से और आपके कृतियों से लोगों को मालूम पड़ेगा। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को साफ करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, भगवान के नाम का जप करने से हृदय का आईना स्वच्छ हो जाता है, और भव महा दावाग्नि निर्वापणम, जो इस विश्व का सबसे समस्या क्या है, भव महा दावाग्नि, भव मतलब पुनः पुनः जन्म मृत्यु का चक्कर, इस बार बार जन्म मृत्यु को जो होता है उसको भव महा दावाग्नि, मतलब जंगल में लगा हुआ अग्नि को तुलना किया उसका, क्योंकि जंगल में जो अग्नि लगती है दो पेड़ों के घिसने से लगती है, और उसको रोकना केवल वर्षा को मुमकिन है, अगर वर्षा होती है तो ही वो अग्नि रोक सकती है, कितना भी जल फेंको, कितने भी क्या बोलते हैं उसको, फायर ब्रिगेड के बम वहाँ पहुँचेंगे, पानी सप्लाई करेंगे, जंगल की अग्नि बुझ नहीं सकती है, वो लाखों करोड़ों पेड़ों को जलाकर भस्म कर देती है और रुकती नहीं है, लॉस एंजलिस में हो या हिमालय में हो, किधर भी हो, जब लगती है तो उसको बुझाना किसी के बस में नहीं होता है, जब वर्षा होगी तो बुझेगा। तो इतना बड़ा जो भयंकर दावाग्नि है, जंगल में जलने वाली अग्नि जैसा, जन्म मृत्यु का पुनः पुनः का चक्र जो है वो इस भगवान के नाम का जप करने से नष्ट हो जाता है, ये समझने वाली बात है। और उसके आगे जाकर सुनेंगे, न केवल जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप का जो बीज है जिससे पाप करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके पाप करने के बारे में लोग बोलते हैं, उसके बारे में पाप करने को उद्युक्त हो जाते हैं और पाप कृति करते हैं, वो जो बीज है वो बीज केवल भगवान के नाम के जप से नष्ट हो सकता है। दान पुण्य तीर्थ यात्रा और यज्ञ यानी कर्म कांड आदि ज्ञान प्राप्त करने से आपके पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं, पाप कर्म का फल नष्ट हो सकता है, लेकिन पाप करना करने की जो प्रवृत्ति है, डिजायर, एटीट्यूड, टेंडेंसी, वो केवल जड़ से भगवान का नाम लेने से ही नष्ट हो सकती है। और बाकी सारे कार्य जो है वो केवल जमीन से पेड़ को काटने जैसा है, फिर दोबारा पेड़ आएगा ऊपर। क्यों? उसकी जो जड़ जो है वो जमीन के अंदर है। आप खुश हो गए, अरे हमने झाड़ को काट दिया, एकदम प्लेन बना दिया उसको, लेकिन नहीं, जड़ से फिर पेड़ की उत्पत्ति होती है। और जड़ अगर पाप करने के, जड़ जो अगर बैसा हुआ है हृदय के अंदर, फिर वो पाप करेगा। कुछ पुण्य कर्म करके पाप का फल को नष्ट कर दिया आपने, लेकिन फिर पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और वो प्रवृत्ति केवल भगवान के नाम के जप से नष्ट हो सकती है। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करने से, जैसे हम आरंभ करते हैं, ब्रह्मा जी अपने स्वर्ग, अपने ब्रह्मा लोक में जहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर आरती की सामग्री जमा करने लगते हैं। बताओ क्यों? एनी आइडिया? यहाँ पर आप जब शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर वो आरती की सामग्री, आरती करने की दिया, अगरबत्ती, घंटी जमा करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान के दिव्य नाम का जप करना आरंभ किया है, वो एक ना एक दिन जरूर भगवान के धाम चला जाएगा। तो जब जाएगा तो ब्रह्मा लोक से गुजरते हुए जाएगा, जब वो यहाँ से गुजरेगा भगवान के धाम जाने के लिए, तब मैं उसकी आरती उतारूंगा। ये ब्रह्मा जी का भाव है। सोचिए, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान के नाम के जप के प्रति में क्या विचार है, क्या भगवान के नाम के जप के विधि के बारे में ब्रह्मा जी सोचते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना गौरव होगा उनके मन के अंदर। क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि ब्रह्मा जी होते हुए वो अरबों साल जीते हैं, और फिर भी उनको, उनके जो अनुयायी हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है भगवान को प्राप्त करना। स्वर्ग लोक में लाखों साल तक लोग जीते हैं, देवता लोग, लेकिन भोग आदि चीज़ों में भूल जाते हैं भगवान को। इसलिए वो भी जानते हैं स्वयं, ये जो मनुष्य जीव जो है, इसका जीवन हमारे जीवन से, यानी ब्रह्मा और देवताओं के जीवन से भी श्रेष्ठ है, जिसमें दुख और सुख का ऐसा मिलाप भगवान ने बना के रखा है कि आदमी यहाँ पर तुरंत भगवान की भक्ति के लिए आकृष्ट हो सकता है। इसलिए वो स्वयं ब्रह्मा होते हुए भी, भगवान की कृपा प्राप्त होते हुए भी, मानव जीव जो भगवान के नाम का जप का विधि स्वीकार करता है, उसकी पूजा की तैयारी करता है। सारे देवता लोग कलयुग में भक्तों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लाखों साल भोग आदि चीज़ों में अपने आप को व्यर्थ करने में क्या लाभ है। 70-80 साल में अगर भगवान का प्रेम प्राप्त होकर भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है, तो वही कलयुग में प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बाकी अन्य युगों में वो विधि उपलब्ध नहीं है जो इस युग में उपलब्ध है। इसलिए वो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इनको छोड़कर कलयुग में जो भक्त भगवान के हैं, उनके घर में, उनके गर्भ में जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य बनने के लिए, ताकि बड़ी आसानी से, बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही सहजता से भगवान के नाम को स्वीकार करके हम जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं, अपने हृदय को स्वच्छ करके उसमें भगवान को बिठा सकते हैं, उनकी आरती, पूजा, उनका ध्यान, चिंतन कर सकते हैं, और जीवन के अंत में भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। एक और वर्णन सुंदर इस लीला में आया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आँखों से आंसू बहाते हुए इस मंदिर को साफ किया है। और एक वर्णन बीच में ऐसे भी आता है, अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुबह से वर्षा हो रही है ना, कितनी घनघोर वर्षा हो रही है, बोले श्रावण महीने में जो घनघोर वर्षा होती है, उस तरह से चैतन्य महाप्रभु के आँखों से अश्रु की वर्षा हो रही थी। और कई जगह पर उन्होंने डोंट टेक आउट योर हैंड और कई जगह पर उन्होंने अपने आँखों से वर्षा की तरह गिरे हुए पानी से साफ सफाई किया है। तो यहाँ पर वो भाव दिखाते हैं कि क्या भाव होना चाहिए। केवल साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, ये साफ सफाई का उद्देश्य है कि इस जगह पर कल भगवान रथ यात्रा में आएंगे और यहाँ विराजमान रहेंगे, यहाँ पर वो बैठने वाले हैं, तो ये सोच कर कि यहाँ पर वो बैठने वाले हैं, उस जगह को मैं साफ कर रहा हूँ, उस भावना से उनके आँखों से अश्रु बह रहे हैं। और केवल ऐसे एक एक बूंद नहीं बह रहा है, जो फिल्में में होता है ना, वो क्लिस्टन डालते हैं हीरो हीरोइन की आँख में, फिर एक एक बूंद बाहर निकलती है नकली अश्रु होते हैं, और एक अश्रु होते हैं मगरमच्छ के, जो खाली निकलते हैं, उसमें कोई भावना नहीं होती है। इसलिए हम झूठे रोने वाले आदमी को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ के अश्रु बोलते हैं, नकराश्रु उसको बोलते हैं। ये दोनों में से कोई अश्रु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अश्रु भाव के हैं, प्रेम के हैं, अति उत्कट भाव उसके द्वारा जब आँखों से आनंद अश्रु बहते हैं, वो आनंद अश्रु का वर्णन यहाँ पर किया है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में भी जो हम प्रार्थना रोज गाते हैं हॉस्पिटल में, उसमें भी कहते हैं नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्रया गिरा, कि कब आपका नाम उच्चारण करते हुए मेरे आंखों से आंसू बहेंगे। मतलब वो आंसू बहना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे जो प्रेम का भाव है वो इम्पोर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि कब मैं आपका नाम इतना प्रेम से लूंगा, इतना प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न होगा आपके नाम के प्रति, और कब मेरे आंखों से आंसू बहेंगे, कब आपका नाम उच्चारण करते ही मेरा कंठ गदगद होगा, मेरे शरीर पर रोमांच खड़े हो जाएंगे। ये सब चीज़ें कभी होती है जब हम लोग अति उत्कट भावना में होते हैं ना, बहुत खुशी होती है हमको। अभी SSC का रिजल्ट लगा है ना, इसके लड़का फर्स्ट आया है, इसकी लड़की फर्स्ट आई है, वो शायद रोते हैं वो आनंद से, बच्चे को गले लगाते हैं, उठाते हैं, चूमते हैं बार बार, और ये सब आनंद का अनुभव करते हैं, शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं उनके, आँखों से मुँह से शब्द नहीं निकलते हैं उनके, आनंद से नेत्रों से अश्रु बहते हैं। ये तो भौतिकता चीज़ें हैं, ये तो टेम्पररी चीज़ें हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में जो आनंद होता है ये इससे लाखों करोड़ों गुना होता है। थोड़ा थोड़ा अनुभव हम कर सकते हैं, हाँ, जब भी हमको बालक जन्म होता है हमारा तो हमको खुशी होती है, कभी कभी वहाँ आंसू बहाती है, पिताजी को भी रोना आता है कि हमारे बेटे को बेटा हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा अनुभव देते हैं भगवान, लेकिन ये भौतिक चीज़ें हैं, इसकी शुरुआत है और उसका अंत है। कल उठ के लड़का बड़ा होकर दारू पिएगा तो वही उसके लिए हमें आंसू बहेंगे, लेकिन आंसू दुख के होंगे, कभी सुख के कभी दुख के, ये यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन भगवान के विषय में जो आनंद होता है वो हमेशा आनंद ही होता है, शुरू से लेकर अंत तक, कभी उसमें मिलावट नहीं होती है, कभी वो कम नहीं होता है, कभी घटता नहीं है, वो बार बार वो आनंद जो है वो बढ़ते रहता है, और कोई व्यक्ति उसको चुरा नहीं सकता है इस आनंद को। तो भगवान ने इस क्रिया में क्या दिखाया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो पूरी लीला है, उनका जो अवतार है, पूरी लीला है, वो केवल इसलिए है कि भक्त लोग जो भगवान को प्रेम करने के स्तर पर पहुंच चुके हैं वो कैसा कार्य करते हैं और वो कार्य करते करते क्या क्या होता है, ये पूरी लीलाओं का वर्णन भगवान के 48 साल की लीला में है। तो केवल भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त भी आंखों में आंसू लेकर साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि भगवान के आंखों में श्रावण की वर्षा की तरह आंसू बह रहे हैं, चाहे उनके मनो कुछ बूंदे गिर रही होगी, लेकिन सबके हृदय में उसी प्रेम का अनुभव हो रहा था जो भगवान के देख कर सबको अनुभव हो रहा था। तो हमें भी सीखना यही है कि हमारा काम चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर तो साफ सफाई की लीला हो रही है, हम चाहे मैनेजमेंट करते होंगे, आप चाहे क्लर्क का काम करते होंगे, कोई और किसी नर्सिंग का काम करते होंगे, डॉक्टर का काम करता होगा, घर में कोई माँ खाना बनाने का काम करती होगी, कपड़ा धोने का काम करती होगी, काम ऊंचा और नीचा नहीं होता है कभी भी। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था जब हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम बताते हैं हमेशा कि जब रामचंद्र भगवान ने सेतु बनाया था तो वहाँ पर एक गिलहरी आई थी और हनुमान जी भी थे, तो रामचंद्र जी ने भगवान ने हनुमान जी को बताया कि जो गिलहरी का काम गिलहरी कर रही है वो आपसे नीचा नहीं है, जो आप कर रहे हो वो गिलहरी के काम से श्रेष्ठ नहीं है, उसके दोनों के पीछे का जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है और उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए काम कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है, काम करने के पीछे जो भाव होता है वो ऊंचा और नीचा होता है। अगर आप सबसे बड़ा काम कर रहे हो लेकिन आपके मन में द्वेष और हिंसा और क्रोध है तो आपका काम घटिया है, और कोई सबसे नीचा काम कर रहा है दुनिया की दृष्टि से, अगर उसके मन में भगवान का प्रेम है, प्रामाणिकता है, मालिक के प्रति निष्ठा है उसके मन में, तो वो काम श्रेष्ठ हो जाता है। और हमारा मालिक जो दुनिया का होता है वो हमारे काम को भाव से स्वीकार नहीं करता है, अरे कितना अच्छा भाव है इसका, वो उसको उतनी तनख्वाह देगा जो उसकी तय की गई है, 500 रुपया या 1000 रुपया। लेकिन भगवान जो है वो भंगी के भी हृदय का भाव उसी तरह स्वीकार करते हैं जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है अच्छे पद पर बैठा है उसी को भाव को स्वीकार करते हैं। जब भगवान गए थे मिथिला देश में गए थे कृष्ण भगवान द्वापर युग में, तो एक बाहुलाश्व और एक और भक्त, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों के घर में गए, लेकिन एक था राजा, मिथिला का राजा था बाहुलाश्व, और एक था गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहा करता था। एक जगह राजा भगवान ने 56 भोग का आस्वाद लिया, मखमली आसन पर बैठते हुए पंखा करते हुए 56 अच्छे अच्छे उच्च व्यंजन जो है उनका आनंद लिया राजा बाहुलाश्व के घर में, और उसके बाद में गए वो एक ही साथ में गए। एक्चुअली वर्णन ऐसा आता है कि भगवान दो रूप में विस्तारित हुए और एक ही समय पर एक ही जगह समय पर वो दो जगह पर गए। उसी समय पर वो दूसरी जगह पर टाट पर जमीन पर बैठ के, गोबर के द्वारा लिपी हुई जमीन है उस पर टाट बिछाया हुआ है उस भक्त ने, और वो केवल सूखी रोटी उनको खिला रहा है, भगवान मांग मांग कर खा रहे हैं, और राजा भोलाश्व घर में भी मांग मांग के खा रहे हैं, क्योंकि दोनों भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, एक गरीब था और एक राजा था, लेकिन दोनों जगह पर भगवान ने बड़े प्रेम से आस्वादन किया क्योंकि दोनों भगवान के भक्त थे। मतलब दोनों जगह पर भगवान ने ना 56 भोग खाया ना को सूखी रोटी खाई, दोनों जगह भगवान ने आस्वादन किया उनके भाव का और प्रेम का। और इसके विरुद्ध कहानी क्या है, दुर्योधन ने उनको बुलाया 56 भोग खाने के लिए, उसको त्याग करके विदुर के घर में गए और विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खाया, केला फेंक दिया उसने। इसका मतलब भी यही हुआ कि वहां प्रेम का उन्होंने आस्वादन किया, और क्योंकि दुर्योधन के मन में कपट था, पॉलिटिक्स था, तो वहां का 56 भोग उन्होंने त्याग कर दिया। लोगों को लगा कि वो जा रहे हैं उनके घर में, वहां से आगे होते हुए उनको घर में ना घुसते हुए आगे चले गए, वो सूर्य विदुर की झोपड़ी में चले गए। ये सब मैं इतनी कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि अपने काम में प्रेम और भक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। धन हमको जरूर मिलेगा, पगार के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, प्रमोशन मिलना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे जाकर उसका एक परम उद्देश्य भी है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और जब हम, हमारा ये परम भाग्य कि हम भगवान के प्रसन्न करने के लिए जो संस्था जो है जिसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, उस संस्था में ही हम लोग काम कर रहे हैं, और इस संस्था में निस्संदेह हमारा काम जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि इस संस्था को जब बनाया गया तभी हमारे गुरुदेव ने को बताया था कि यहाँ से भगवान के विषय में जो ज्ञान है उसका प्रकाश होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में या इस अस्पताल में प्रवेश करेगा, किसी भी कारण से, मरीज बन के या मरीज को मिलने के बहाने या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बहाने या स्टाफ के बहाने या डॉक्टर के बहाने, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको भगवान की कृपा का स्पर्श होना चाहिए, भगवान के विषय में अनुभूति, ज्ञान, जानकारी मिलनी चाहिए, छोटी मोटी प्रमाण में क्यों ना हो लेकिन ज़रूर मिलना चाहिए। और उसके नीचे फिर वैद्यकीय व्यवसाय है, फिर ट्रीटमेंट भी होता है, फिर इक्विपमेंट भी है, फिर पॉलिसी भी है, सब तनख्वाह भी है, सब कुछ सिस्टम बनाया गया है। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है कि मूल उद्देश्य यह है, आपको इंडक्शन में बताया गया था ये विषय, जन्म मृत्यु का चक्र जो है उससे मुक्ति करने का मार्ग लोगों को यहाँ से मिलना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस जो है उनको यहाँ समझना चाहिए। तो इस जगह पे आप जो काम करोगे, जो भी काम करोगे, प्रभुपाद जी के चरणों में और भगवान के चरणों में पहुँच रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला से बता रहे हैं कि किस भाव से काम करना चाहिए। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों से श्रावण की वर्षा की तरह मुसलधार वर्षा बह रही है, वर्षा हो रही है अश्रुओं की, और उस अश्रुओं से उन्होंने कई स्थान स्थापन साफ किए। इतनी लीला सुंदर है ये, इतनी शिक्षा देने वाली लीला है कि कितना बिल्कुल जैसे आयोजन किया गया था उसके अनुसार उसको साफ किया गया, किसी व्यक्ति ने भगवान की योजना को ठेस नहीं पहुँचाया, एकदम जैसे बताया गया था सिस्टमेटिकली। कुछ लोग पानी दे रहे थे, कुछ लोग तालाब पर खड़े थे ट्रांसफ़र कर रहे थे, कुछ झाड़ू धो के खड़े थे ट्रांसफ़र कर रहे थे, खाली बाल्टी को वापस ट्रांसफ़र कर रहे थे, वहाँ से पानी भर के पहुँचा रहे थे, फिर फेंक रहे थे, फिर उसको पहुँच रहे थे, जैसे बताया वैसे किया है उन्होंने। और एंड में ऐसे कहा कि न केवल उन्होंने गुंडीचा मंदिर को स्थापन किया, उसके भोग मंदिर को साफ किया, उसको साफ सफाई किया, बाजू में नरसिंह मंदिर है वो आज भी वहाँ पर विराजमान है, उस मंदिर को भी भगवान ने साफ किया। और फिर सब लोग गए और उन्होंने जब मंदिर के बाहर आए तो देखा कि वहाँ पर नदियाँ बह रही थी, जो साफ किया हुआ पानी था जो बाहर उन्होंने फेंका है उसकी सब जल वहाँ पर बह रहा था। फिर सब लोग मंदिर में गए और फिर उन्होंने दिव्य कार्य किया, वो है भगवान के नाम का कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया, और बड़े बड़े भक्त वहाँ पर आए, उनके प्रमुख भक्त जो हैं, और सब ने मिलकर बहुत आनंद के लिए आनंद करते हुए अति उत्कट भावना में नृत्य किया और कीर्तन किया। यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि जब साफ सफाई करते हैं तो उसको वहाँ पर छोड़ नहीं देते हैं, उसका पर्पज है कि भगवान की सेवा वहाँ पर हो जाए, भगवान का निवास हो जाए, भगवान वहाँ स्थापन हो जाए, प्रकट हो जाए, और उनकी सेवा में भगवान का कीर्तन किया जाए। तो सब लोग वहाँ पर मिलकर कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत खूब खूब नाचते हैं, आंखों में अश्रु बहाते हैं, कंपन शरीर में उठ के होता है, सब जो अति आनंद के लक्षण हैं उनका अनुभव करते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। फिर जो भगवान के प्रमुख भक्त हैं उन्होंने उनको सेवा दे दिया था, वो मंदिर से महाप्रसाद लेकर आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद बांटते हैं। उधर भी पहले नहीं बैठते हैं कि मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे लोगों को सेवा किए जाए, वो कहते हैं जितना भी रूखा सूखा आइटम है एक आध दो आइटम मेरे को रखो, और जितना पंच पकवान है वो सब मेरे भक्तों को बांट दो, और अपने हाथ से अलग अलग चुन चुन के जो व्यंजन है, जो श्रेष्ठ व्यंजन है, वो अपने हाथ से सब भक्तों को परोसते हैं और सब भक्तों को खिलाते हैं, और खुद बैठ जाते हैं केवल सूखा सूखा आइटम लेकर। तभी नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैत आचार्य आकर भगवान को कभी यहाँ से डालते हैं कि वहाँ से डालते हैं, नहीं 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 बोलते हैं, वो फिर भी डालते हैं उनको, बोले ये चैतन्य महाप्रभु जी आप लीजिए, ये जगन्नाथ जी का विशेष महाप्रसाद है, अभी अभी आया हुआ है, फ्रेश है एकदम, प्लीज लीजिए, ऐसा करके करके कभी ट्रिक करते हैं, कभी फोर्स करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बड़े उनके आनंद के लिए वो आते हैं। और ऐसा भी लिखा है कि उनके मन में डर भी था, क्योंकि जगदानंद पंडित जो था एक भगवान का भक्त है, बहुत विशेष भक्त, वो भगवान को डांटते थे हमेशा, इतना प्रेम था उनका, जैसे कि माता है भगवान की, वो डांटते ना भगवान को, आप कैसे थे? भगवान को डांट कैसे सकते, लेकिन जो माता के भाव में है तो डांटेगा ना वो। तो वो ऐसा कहा गया कि वो जो कुटिला है, जो राधा रानी की ननंद है, उनका अवतार है वो जगदानंद पंडित, तो उसका भाव ये था हमेशा भगवान को राधा रानी के हाथ में पकड़ना और उनको चेस्टाइज करना, उनको दंड देना। तो उसी भाव में थे वो जगदानंद पंडित। और वो जगदानंद पंडित को गुस्सा ना आ जाए कि हमने दिया और आपने खाया नहीं, फिर डांटेंगे उनको, इसलिए उनको देख देख के उन्होंने सब कुछ खाया। और इस तरह से फिर आगे जाकर जगन्नाथ जी का रथ उत्सव हुआ। और ये रथ उत्सव में ये सारी व्यवस्था जो थी राजा प्रताप रुद्र के कंट्रोल में, अधिकार में हुई। और फिर राजा प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाया और चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि जरूर कृष्ण भगवान इन पर कृपा करेंगे। स्वयं वही कृष्ण है लेकिन बता रहे हैं कि जरूर कृष्ण भगवान इन पर कृपा करेंगे। और कैसी कृपा की उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने जब नृत्य किया तो 7 पार्टियों को अरेंज किया उन्होंने रथ यात्रा में, 7 पार्टी के 7 लीडर्स, 7 सिंगर्स, 7 मृदंग वादक, 7 करताल वादक और 7 ग्रुप्स उसके अंदर नाचने वाले ग्रुप, अलग स्पेशलाइज्ड ग्रुप। हर एक ग्रुप में एक करताल, एक गाने वाला, एक मृदंग वाला और कुछ भक्त गिने चुने नाच करने वाले, लीड डांसर बोलते हैं उसको, डांस लीडर्स से 7 ग्रुप उन्होंने अपने निर्देश में तैयार किए और उनको नृत्य करने के लिए आरंभ करने को बोला। और 7 ग्रुप में जब नृत्य शुरू हुआ तो चैतन्य महाप्रभु 7 रूप में विस्तारित हुए और उनमें नृत्य करने लगे। जैसे गोपियों को लगा था कि सबको छोड़कर केवल मेरे साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, मैं इतनी विशेष गोपी हूँ कि भगवान सब गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ नाच कर रहे हैं, वैसे ही सब भक्तों को लगा कि इतने सारे 6 ग्रुप को छोड़कर केवल हमारे ग्रुप में भगवान आके नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान 7 ग्रुप में नृत्य कर रहे थे। लेकिन इसी किसी को ये नज़र नहीं आ रहा था, अगर आप अपने ग्रुप में भगवान को देख रहे हैं नाचते हुए, आपको दूसरे ग्रुप में भगवान नज़र नहीं आएंगे। लेकिन राजा प्रताप रुद्र ने दूर से ये 7 रूप भगवान के देखे एक साथ नाचते हुए, ये विशेष कृपा भगवान ने राजा प्रताप रुद्र पे की। ये जो इनकी लीला थी 7 रूप में विस्तारित होकर नाचने की, ये केवल स्वरूप दामोदर और एक और 2 व्यक्तियों को दिखाई दी और उसमें से एक व्यक्ति राजा प्रताप रुद्र थे। राजा प्रताप रुद्र इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसके बीच में भक्त खड़े थे, तो भक्त के बीच में वो खड़े थे, तो भक्त को गुस्सा आया, उसने प्रताप रुद्र को एक तमाचा मारा जोर से, तो मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, मैं देख रहा हूँ भगवान का नृत्य। दूसरे भक्त ने कहा कि तुमको इस भक्त ने थप्पड़ लगाया है कि तुम्हारे लिए परम भाग्य की बात है कि उसके हाथ का स्पर्श तुमको हो गया है, क्योंकि जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श हो गया उनके हृदय से अटूट प्रेम की धारा बहने लगी। उनको आश्चर्य हो रहा था, ये भक्त ने गुस्सा किया था, तमाचा मारा, मेरे हृदय में प्रेम का प्रकट क्यों हो रहा है। दूसरा भक्त समझाता है कि इस भक्त का आपको हाथ लगा है, आपका परम भाग्य है। इस तरह से रथ यात्रा का जो लीला हम बताएंगे आपको आगे जाकर, कि चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का महोत्सव कैसे संपन्न किया। तो हम सबके लिए हमारा ये भाग्य यही है कि हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, मतलब एटलीस्ट उनका परिचय हमको है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसको छन्न अवतार माना गया है। छन्न मतलब छुपा हुआ, सीक्रेट अवतार। क्योंकि आप इतिहास के पुस्तक पढ़ेंगे 4वीं 5वीं के, तो क्या लिखा होगा उसमें, एक बंगाल के मशहूर संत चैतन्य महाप्रभु, ऐसा लिखा है। लेकिन संत और भगवान में अंतर होता है। तो जनता जो है पूरी, इतिहासकार जितने भी है, वो उनको संत के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहीं भी प्रकाशित नहीं किया है, केवल कुछ गिने चुने शास्त्र हैं। 8 जगह पर उन्होंने वर्णन उनका आता है कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कृष्ण स्वयं उनका रूप, भक्त का रूप लेकर आएंगे, और भक्त का रूप लेते हुए ये मना करेंगे कि मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु की पूरी 48 साल के लीला में जब जब उनको भक्त लोगों ने भगवान करके पुकारा है, तभी वो विष्णु 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 ऐसे गलत शब्द क्यों बोलते हो, ये अपराध है किसी जीव को भगवान कह के पुकारना, ऐसे बोलते थे वो। लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन लीला में कुछ कुछ घटनाओं में ये प्रकट किया है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। यहाँ तक कि विराट रूप का दर्शन भी कराया है, शिवा सांगन के घर में अपना विराट रूप दर्शन कराया है, कृष्ण रूप का दर्शन भी दिया है, राम रूप का दर्शन भी दिया है, नरसिंह रूप का दर्शन दिया है। हर रूप का अवतार का उन्होंने दर्शन दिया है अपनी षट प्रहरी लीला के अंदर, जो 21 घंटा तक चलती रही श्रीनिवास ठाकुर के घर में। अर्थात उस 21 घंटे की लीला में को सत प्रहरी लीला कहते हैं, 7 प्रहर 3 घंटे के, 21 घंटे की लीला है वो। और वो 21 घंटा में लगातार कंटिन्यूसली वो अलग अलग भक्तों को अलग अलग अवतारों के दर्शन दिखाते हैं। और ऐसे भी लिखा है शास्त्र में कि सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके अपने अपने भक्तों का एक ग्रुप है। नरसिंह भगवान का भक्तों का एक समुदाय है, मत्स्य अवतार के भक्तों का समुदाय है, ऐसे हर एक अवतार के अपने अपने भक्त समुदाय है। वो सारे भक्त समुदाय जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में समाविष्ट होने के लिए अलग अलग रूप लेके समाविष्ट हो जाते हैं। तो उन सभी भक्तों को, जैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार से, हाँ बृहस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आए, ललिता और विशाखा स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बनकर आए, इस तरह से कई प्रकार के भक्त जो अलग अलग प्रकार के अलग लीलाओं के भक्त जो हैं, प्रहलाद जी वासुदेव दत्त बनकर आए, वो सभी भक्तों को भगवान ने उनकी उनकी भावना के अनुसार, उनके उनके जो इष्ट भगवान थे, जिनके भगवान के अवतारों के जो भक्त थे, वो दर्शन भगवान ने उनको कराया। लेकिन ये सब गुप्त लीला में हुआ, जनता के प्रकट स्थान में नहीं हुआ। ये मैंने आपको क्यों बताया, कारण ये है कि उन भक्तों को जैसे भगवान ने दिखाया कि वो भगवान थे, बाकी लोगों को बताया कि भगवान नहीं हूँ। तो हम लोग उन भाग्यवान लोगों में से हैं, इसलिए हम प्रभुपाद जी की कृपा से उनकी किताब पढ़कर समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के छंद अवतार हैं और स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, ये हमें पता चल गया है, ये हमारे परम भाग्य की बात है। और उन्हीं के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये हमको यहाँ पर पता चल रहा है। ये प्रार्थना हम लोग रोज आते हैं, हमारे हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग से लेकर डॉक्टर्स लेकर सब लोगों को ये प्रार्थना मुखोद्गत है, जो बड़े बड़े भक्तों को भी कभी याद नहीं होती है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में सब लोग उसको बाय हार्ट जानते हैं। सुबह देखिए आप, दोपहर को देखिए, सब लोग बड़े याद करके उसको गाते हैं। ये बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया केवल एकमेव शास्त्र है, वो है शिक्षाष्टक की प्रार्थना, बाकी कुछ भी शास्त्र उनका लिखा हुआ नहीं है। और वो एकमेव शास्त्र जो है हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को बाय हार्ट है, कितनी भाग्य की बात है। और इसी उपलक्ष्य में जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन का लीला प्रकट किया, वही लीला हमको भी यहाँ पर उसी भावना से करने का मौका भी मिल रहा है। आप अस्पताल में कौन सी जगह साफ कर रहे हो, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं पैथोलॉजी कर रहा हूँ, आप लोग एक्सरे कर रहे हैं और हम लोग फोतलर वार्ड कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यह है कि आप किस भावना से और उसकी सिंसेरिटी से, किस प्रामाणिकता से उसको साफ करेंगे। भगवान की याद करते हुए, मुख से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए जब आप ये सब करेंगे, तब आपको चैतन्य महाप्रभु के कृपा के द्वारा उन भक्तों को जो अनुभव हुआ प्रेम का मंदिर मार्जन करते हुए, वही अनुभव आप सबको होगा। और उसकी तैयारी करने के लिए ये सप्ताह बीच में रखा गया है, टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपकी तैयारी करने के लिए ये 7 दिन दिए गए हैं। तब तैयारी करके लास्ट डे में आप 3 तारीख को इस भावना से उसको उतारेंगे अपनी कृति में, तो आपको वो आनंद होगा जो भक्तों को भगवान ने 500 साल पहले गुंडीचा मंदिर के अंदर दिया गया। और उसके बाद में जब आप सफलता प्राप्त करेंगे इस महासफाई के अंदर, तब जाकर भगवान ने भक्तों को रथ यात्रा में दिव्य आनंद का अनुभव दिया, वो आनंद आपको इस छोटी सी रथ यात्रा में मिलेगा। ये नहीं कि आपको जगन्नाथपुर जाना पड़ेगा, वो तो जाएंगे आप जिंदगी में कभी एक बार, लेकिन उसी प्रकार का, उसी क्वालिटी का आनंद जो है आपको भक्ति विधान हॉस्पिटल में बनाई गई छोटी सी रथ यात्रा में आपको वो अनुभव हो सकता है, अगर आपका भावना सही जगह पर है। जैसे आपके घर में रेडियो होगा और आपको बीबीसी सुनना है, बीबीसी का न्यूज़ सुनना है, तो आपका कांटा जो है रेडियो का, वो अगर आप ठीक से उधर उस नंबर पे लाओगे तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी मानो आप इंग्लैंड में बैठे हो, जहाँ से वो बीबीसी का रेडियो जो टीवी है वो चलता है, बीबीसी चैनल, ऐसा लगेगा आपको कि आप वहीं पर बैठ के सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो कांटा है रेडियो का वो उस जगह पर आके खड़ा कर दिया है, सही जगह पर, इसलिए आपको वहाँ की साउंड वाइब्रेशन जो है साउंड सुनाई पड़ रहा है। आपको मन में आया विविध भारती सुनना है जो भारत से आता है, तो आपको कांटा वहाँ हिलाना पड़ेगा, वो सही जगह पर आएगा तो आपको उसी रेडियो से विविध भारती का आवाज़ सुनाई पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपका जो कांटा है जो घुमाते हैं वो अगर आप भगवान की दिशा में लगाओगे, तो भगवान की चेतना है, भगवान की भावना, प्रेम, भक्ति, प्रामाणिकता, सिंसेरिटी जो है वो आपको उसका अनुभव मिलेगा। तो चैलेंज केवल एक ही है, आपकी चेतना का कांटा जो है वो सही जगह पर लाना, और जब वो सही जगह पर लाएंगे तो आपको वही अनुभव होगा जो हम सबको भगवान के दिव्य धाम में हुआ करता था जब हम सब लोग भगवान के पास रहा करते थे। वही आनंद आज भी हमारे लिए उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु की दिव्य कृपा के द्वारा। वही आनंद हमको आज भी इस पतित कलयुग के पतित मानवीय जीवन का जीवन जीते हुए दुख सुख का अनुभव करते हुए भी वो दिव्य आनंद का अनुभव हमें मुमकिन है अगर हमारी चेतना सही जगह पर है। वो तैयार करने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है ताकि हमारी चेतना सही रूप में तैयार हो जाए और उस चेतना के माध्यम से दिव्य आनंद हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है। और फिर उसके आगे इस जीवन में जीते हुए भी इस मरने वाले शरीर में जीते हुए भी उस आनंद का चिरंतन चिरकाल तक अनुभव आप कर सकते हैं। यही है साइंस है और कुछ नहीं। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, माई बेस्ट ऑफ विशेस आप सबके लिए ताकि आप सब लोग मिलकर इसी भावना से ये जो मंदिर अस्पताल के मार्जन का हमने प्रोग्राम बनाया है 3 तारीख को उसको उसी भावना से आप सफल करने में सफल रहें। ये मेरे आप सबके लिए प्रार्थना है। मैं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग बड़ी अच्छी श्रेष्ठ भावना से इस उत्सव को मनाएं और फिर अंतिमतः जगन्नाथ रथ यात्रा का दिव्य आनंद प्राप्त करें। हरे कृष्णा और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।